नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोकसभा स्पीकर चुनाव की, जो कि 26 जून को होना है। इसे लेकर सरकार और विपक्ष में आम सहमति नहीं बन पा रही है। विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और 26 जून को जब ये चुनाव होगा, लोकसभा स्पीकर का चुनाव, तब क्या विपक्ष भी अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार पेश करेगा, इस पर विचार हो रहा है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जानकारी आ रही है, और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि एनडीए किस उम्मीदवार को उतारता है, इस पर भी विपक्ष का रुख जो है वो तय होगा। डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष मांग सकता है। तो ये सभी चीजें जो हैं, इस पर विचार हो रहा है, आखिरी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। और हम बात कर रहे थे लोकसभा स्पीकर चुनाव की, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष में आम सहमति नहीं है, नहीं बन पाई है अभी तक। और विपक्ष इस पे कुछ विचार कर रहा है कि क्या अपना उम्मीदवार उसे उतारना चाहिए। प्रशांत अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर विपक्ष विचार कर रहा है और कब तक फैसला ले पाएगा?
देखिए कादम्बिनी, इस बार ऐसा लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान की नौबत आएगी, क्योंकि विपक्ष, जैसा आपने बताया, इस बात पर विचार कर रहा है कि जो भी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ वो अपना उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतारे। पिछले 2019 की अगर हम बात करें तो आम सहमति से उस पर ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का ये कहना है कि आमतौर पर जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होता है वो विपक्ष को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बात पूछी, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष सरकार से डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई बार्गेन कर सकता है। वो कह सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो, हमारा उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरे, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष में बड़ी गंभीरता से ये विचार हो रहा है, और मुझे बहुत पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इंडिया गठबंधन की ओर से इस बार अपना उम्मीदवार उतारा जाए। और आपने देखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया है। कांग्रेस लगातार ये बयान दे रही है कि जेडीयू और टीडीपी जैसी जो पार्टियां हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चलकर भाजपा उनकी पार्टी में टूट कर सकती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को घेरे, सरकार की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जाए। लेकिन बीजेपी के लिए आज एक अच्छी खबर ये आई कि जेडीयू ने बिना शर्त लोकसभा जो भी एनडीए का उम्मीदवार होगा, बीजेपी का उम्मीदवार होगा, उसको बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर जरूर आई है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान की नौबत संभवतः आने वाली है। कोशिश ये है विपक्ष की, और सरकार की तरफ से भी अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें चुनाव देखने को मिलेगा।
बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखते हैं कि आगे इस पर क्या होता है, क्या विपक्ष का भी उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए इसमें आता है। उधर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मंत्री बनने के बाद पहली बार प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। हमारे सहयोगी मुबारक खान से खास बातचीत में भागीरथ चौधरी ने अपनी जिम्मेदारी और सरकार के रोडमैप को बयां किया।
हमारे साथ कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी हैं। पहली बार मंत्री बनने के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। पहली बार मंत्री बनने के बाद भाजपा मुख्यालय आ पाए, क्या कहें?
भाजपा मुख्यालय ये हम सबका पवित्र मंदिर है, भाजपा के आम कार्यकर्ता के लिए। मैं तो इस कार्यालय को नमन करता हूं, और क्योंकि कार्यकर्ता ही और संगठन ही हम सबको घड़ता है। जो आज हम जिस जगह हैं, इसमें संगठन का और कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए सबसे पहले कार्यालय आना चाहिए। हमारे लिए यही सब कुछ है, और मैं तो कार्यालय को नमन करता हूं। और जिन्होंने मेरे जैसे एक साधारण किसान के घर में जन्म लिए कार्यकर्ता पर विश्वास किया और मुझे फिर दोबारा सांसद लाठी कर दिया, इसलिए पहले तो कार्यालय आना था मुझे।
पहली बार जब आप यहाँ आए किस तरह, क्योंकि अजमेर के लोगों और राजस्थान के लोगों के लिए किस तरह देखते हैं आप इसको?
किसान देश का अन्नदाता है, 145 करोड़ जनता का पेट भरता है, किसान रात दिन मेहनत करता है और इसलिए किसान के घर में खुशहाली आनी चाहिए, खुशहाली आएगी तभी देश।
आप खुद किसान परिवार से आते हैं, मोदी जी ने आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है।
देखिए मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है और किसान हित के लिए मोदी जी रात दिन चिंता करते हैं और 10 साल में जो उन्होंने MSP बढ़ाई, किसान सम्मान निधि दी, जो किसानों की खुशहाली के लिए जो उन्होंने काम किया है, फिर जो विपक्ष किसानों को गुमराह करके जो कृषि बिल, आज भी मैं कहता हूँ किसानों के लिए वरदान साबित होता है, दुर्भाग्य था कि कृषि बिल राजनीति के भेंट चढ़ गया। हम किसानों के बीच में जाएंगे, अन्नदाता के बीच में जाएंगे, उनके बीच में बैठेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उनकी समस्या का
आपकी प्राथमिकता है। और किसानों से क्या अपील करना चाहते हैं आप?
हम किसानों के बीच में जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, बैठेंगे।
उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर हुए बड़े हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। टेम्पो ट्रैवलर के अलकनंदा नदी में गिरने से यह हादसा हुआ। गाड़ी में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। घायलों में 6 की हालत गंभीर है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश भेजा गया है। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। घायलों को 50,000 की मदद दी जाएगी।
अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटे पहले एक टेम्पो ट्रैवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू वाला काम पूरा हो जाए।
हादसे पर PMO ने ट्वीट किया है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है, इसमें अपने प्रियजनों को खोने वाले शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद में जुटा है। PM राहत कोष के मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की मदद की जाएगी। किशोर रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर, कुल कितने लोग घायल हैं? आपने बताया कि 6 लोग जो हैं उनकी हालत काफी गंभीर है।
बिल्कुल, इसमें अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 26 लोग सवार थे, 12 लोग इसमें डेथ हो चुकी है और 14 लोग इसमें घायल है। 6 गंभीर रूप से घायल थे, जो क्रिटिकल कंडीशन थी उनको एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स लाया गया है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ डेथ्स की जिसमें 12 संख्या आ रही, उसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, और रेस्क्यू के दौरान जब उन्होंने रेस्क्यू करे थे तो वहां 2 लोग की डेथ हुई और 2 लोगों की ऋषिकेश 2 लोगों के हॉस्पिटल में मौत की सूचना है, यानी कुल मिला के 12 लोगों की मौत की सूचना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो ऋषिकेश एम्स है उनके घायलों से मुलाकात की है और ये आश्वासन दिया है कि सभी घायलों की अच्छा इलाज किया जाएगा, उचित इलाज किया जाएगा। अगर यहां से भी हायर सेंटर भेजना है तो वहां पे भेजने की तैयारी राज्य सरकार कर सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी इसमें दुख जताया है, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने, क्योंकि वो उनके ही संसदीय क्षेत्र में ये घटना हुई, उन्होंने भी दुख जताया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। ये बहुत ही दुखदायी खबर है और खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर बहुत सारे लोग यात्रा करने आते हैं और ये लोग नोएडा से देर रात चोपता के लिए चले थे और सभी चोपता जा रहे थे, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पे एक जगह पर, यानी रौतेली जगह है, वहां पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है इसको हल्की सी झपकी आई थी, उसकी वजह से नियंत्रण खोया और गाड़ी सीधा 200 मीटर खाई में गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर 12 लोगों की मौत हुई है। जी
बहुत शुक्रिया आपका किशोर इस पूरी जानकारी के लिए, और निश्चित तौर पर बेहद दुखद खबर जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है। उधर सिक्किम में बादल फटने से और भारी बारिश और भूस्खलन से आफत आई हुई है। भारी बारिश और भूस्खलन से 4 दिन के अंदर 9 लोगों की मौत हुई है। कई दिन से तेज बारिश के बाद बादल फटने की भी घटनाएं हुई हैं और भूस्खलन तो हो ही रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में आगे भी भारी बारिश के आसार हैं। बांग्लादेश और नेपाल के कई नागरिक फंसे हुए हैं। करीब 1200 सैलानी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत की लाइफलाइन NH-10 को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। और इस पर मुख्य सचिव सिक्किम के जो हैं उनका क्या कहना है वो भी सुनते हैं।
3 दिनों में सिक्किम में 2 डिजास्टर हुए, नेचुरल कैलामिटी था। एक तो नामची डिस्ट्रिक्ट के यांगयांग सब डिवीजन में एक डिजास्टर हुआ, नेचुरल कैलामिटी हुई थी, लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 3 लोग हताहत हुए हैं। और उसी तरह अभी कल 13 तारीख की रात में, 12 तारीख और 13 तारीख की इंटरविनिंग नाइट में मंगन डिस्ट्रिक्ट में भी एक नेचुरल कैलामिटी हुआ, लैंडस्लाइड हुई, जिसमें पाक्षेप और अम्बिथांग दो मतलब बैडली अफेक्टेड हमारे गांव हैं, जहां पे 6 लोगों की मृत्यु हुई है।
पिछले 2 हफ्तों में सिक्किम में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। इस महीने जितनी बारिश नॉर्थ सिक्किम में होनी थी उससे डबल बारिश, दुगनी बारिश होने के कारण, और पिछले 4 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जो उत्तरी सिक्किम है, नॉर्थ सिक्किम है, मंगन जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये जिला बाकी राज्य के से कट ऑफ है और वहां पे 1200 से भी ज्यादा सैलानी फंसे हुए हैं। उनको इवैक्यूएट करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग 24 घंटे एक निगरानी और कंट्रोल रूम भी खोल दिया गया है, तो एयरलिफ्ट होने की बात है वहां से जो टूरिस्ट फंसे हुए हैं उन लोगों को, मगर क्योंकि वेदर इतना पैक्ड अप है, इतना इंक्लेमेंट है, इसलिए एयर ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। और अगर सिक्किम के निचले इलाकों की बात करें तो वहां पे फ्लैश फ्लड हुए हैं और वही फ्लैश फ्लड अब जो सिक्किम से सटा हुआ नॉर्थ बंगाल का इलाका है उस इलाके में घुस चुका है, इसलिए कालिंपोंग और जलपाईगुड़ी इन सब जिलों में फ्लैश फ्लड हो रहा है। इसके साथ साथ इन सब इलाकों में अब अलर्ट भी जारी की गई है। नेशनल हाईवे 10 जो कि सिक्किम का लाइफलाइन है उसमें भी कुछ जगह पे डैमेज आने के कारण सिर्फ छोटे व्हीकल ही मूव कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसके साथ साथ सिक्किम और उत्तर बंगाल में और भी ज्यादा बारिश की आशंका और अलर्ट है मेट डिपार्टमेंट की, और सिर्फ सिक्किम ही नहीं, इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के बहुत हिस्सों में फिर से बारिश होने की आशंका है। मेघालय के लिए एक रेड अलर्ट भी है, ऑरेंज अलर्ट है असम के लिए ये इस हफ्ते में और अगले आने वाले कुछ दिनों में। तो देखना यह पड़ेगा कि कब तक स्थिति सामान्य होती है सिक्किम में या फिर उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में भी, क्या बारिश के कारण, क्योंकि लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड बहुत अमूमन होते रहते हैं, तो इसके ऊपर सभी सरकार तैयारी कर रही है। सिक्किम की बात करें तो पिछले साल जो क्लाउडबस्ट के कारण देशियल लेक आउटबस्ट हुआ था हिमालय के ऊपरी हिस्सों में, और इसके लिए इसके साथ साथ नॉर्थ सिक्किम और सिक्किम के बहुत हिस्सों में बहुत भारी क्षति हुई थी। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और 25,000 के जैसे लोग अफेक्टेड हो गए थे और बहुत क्षति हुई थी। और अब जब भी राज्य इस क्षति से उभर के आया है, फिर से फ्लैश फ्लड्स के कारण क्षति हुई है और जानमाल की नुकसान भी हुई है। और अब राज्य सरकार ये कोशिश लगा रही है कि जो सैलानी है उनको बाहर निकाला जाए और जहां जिस जिस इलाके में वल्नरेबल है वहां पे लोगों को सेफ रखा जाए। इसके साथ साथ सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी हो रही है जो ग्लेशियर लेक से उनकी, ताकि पिछले साल की जैसे बड़े फ्लड को के लिए राज्य सरकार तैयार रह पाए।
और अब आपके लिए एक सवाल जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या सरकारों को रेवड़ी राजनीति से पीछा छुड़ाना चाहिए? तो बस स्क्रीन पर आ रहे QR कोड को स्कैन करिए और भेजिए अपना जवाब। एक ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। उत्तराखंड में 477 जल स्रोत सूखने के कगार पर हैं। राज्य जल संस्थान के ताजा आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। इसकी वजह बारिश का न होना और भीषण गर्मी बताया जा सकता है, लेकिन सही वजह कुदरत के साथ छेड़छाड़ है, जिसे लगातार अंजाम दिया जा रहा है।
देहरादून का शिखर फॉल शहर की आधी से ज्यादा आबादी की प्यास बुझाता है, लेकिन इसमें भी अब पानी कम हो गया है।
उत्तराखंड इस वक्त पेयजल संकट से गुजर रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह 450 से ज्यादा झरने और छोटी नदियां, जिनको गदेरा कहा जाता है, उनमें पानी की भारी कमी दिखी जा रही है। जल संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक 50% से लेकर 80% तक इनमें पानी की कमी हो रही है। इस वक्त हम देहरादून के शिखर फॉल में मौजूद है और इस नदी से देहरादून के आधे से ज्यादा हिस्से को पानी दिया जाता है, लेकिन यहां पर भी पानी की कमी हो रही है। वजह इसकी यही बताई जा रही है कि बारिश नहीं हुई है पिछले 2 महीनों में और बारिश का जो रेट है वो काफी कम हो गया है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है।
इस वक्त राज्य में गढ़वाल रीजन में 263 जल स्रोत सूखने की कगार पर है, तो कुमाऊं रीजन में सूख रहे जल स्रोतों की तादाद 214 है। अलग अलग शहरों में क्या हालात है एक नजर डाले तो अल्मोड़ा में 92, पौड़ी में 72, चमोली में 69, पिथौरागढ़ में 47, उत्तरकाशी में 36, टिहरी में 37, नैनीताल में 35, देहरादून में 31, बागेश्वर में 21, चंपावत में 19 और रुद्रप्रयाग में 18 जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच चुके हैं। हालत यह है कि न सिर्फ शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी की किल्लत हो रही है। 400 से ज्यादा बस्तियां पेयजल संकट से इस समय जूझ रही है। अब सरकार स्रोतों को बचाने के लिए अथॉरिटी बनाने की बात कर रही है।
एक सारा का गठन करेंगे। जलागम विभाग के अंतर्गत आपने सुना होगा स्प्रिंग सेट और रिवर रिजर्वनेशन के लिए एक अथॉरिटी बना दी गई है। उस अथॉरिटी को ये मैंडेट दे रखा है कि वो पूरी हमारे सोर्सेज की मैपिंग कराएं। 460 हमारी स्कीमों के बारे में हमने सूचना दी है उनको कि जहां पे हमारे सोर्स अलग अलग स्लैब में डिप्लीट कर रहे हैं। सभी 80% नहीं है, उसमें कोई 25% तक है, कोई 50 तक है, कोई मोर देन 75% है। तो उनके लिए अब ट्रीटमेंट फ्यूचर के लिए कैसे होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन जो सारा के अंतर्गत एक्सपर्ट्स हैं वो भी स्टडी कर रहे हैं।
जानकार कहते हैं कि जल स्रोतों के सूखने का कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों पर हो रहे बड़े बड़े निर्माण कार्य है। जंगलों में वाटर बॉडी न बनना भी कारण माना जा रहा है।
देखिए, लैंड यूज है, अगर वो चेंज होता है या डिफोरेस्टेशन होता है तो उस चीजों से दिक्कत तो होती है। जैसे आपके रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, और उसके बाद आप देखते हैं कि उसमें जो आप इस तरह की चीजें करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो जो स्रोत है वो डीप हो जाता है। ऐसी चीजें बिल्कुल देखने को मिल सकती है।
इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि एक तो हमारे जो पहाड़ों में पहले क्या होता था, चाल खाल का निर्माण होता था, स्वयं लोग गिनते थे तो उसमें संग्रहण की क्षमता हो जाती थी, नीचे के रिसोर्सेज रिचार्ज हो जाते थे। तो इस वजह से अब क्या कि बार बार जंगलों में आग लगना, इस प्रकार की घटना बढ़ रही है, तो अब लोगों का ये काम भी बंद कर दिया है इन्होंने, और इस वजह से सोर्स रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं।
बहरहाल उत्तराखंड सरकार अब एक एक्शन प्लान ला रही है और एक कमेटी बना रही है, जिससे उत्तराखंड में पेयजल संकट को दूर किया जा सकेगा और जल्द ही जल स्रोतों को बचाने का काम भी शुरू किया जाएगा। लेकिन अगर सरकार पहले से ये एक्शन प्लान या कमेटी लाती तो शायद उत्तराखंड में इस तरह का पेयजल संकट ना खड़ा होता, ना ही लोगों को प्यास बुझाने के लिए धरने प्रदर्शन करने होते और ना ही टैंकर मंगवाने पड़ते। बहरहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जल्द इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे और जल्दी एक एक्शन प्लान तैयार करे ताकि आने वाला जो समय है उसमें पेयजल संकट से बचा जा सके। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।
नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। हाल के दिनों में हमने देखा दिल्ली में कैसे पानी की किल्लत हुई और हालत ये हो गई कि पानी पर पहरा लगाना पड़ा उसकी रक्षा के लिए, ताकि पानी चुराया ना जा सके, टैंकर माफिया ना चुराए, आम लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। लेकिन ये किस्सा न सिर्फ दिल्ली का है बल्कि और भी जगहों का है, और भी शहरों का है, और भी देशों का है। कुछ देश इस पर जिन पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, करीब 25 देश ऐसे हैं जिन पर पानी की कमी जहां पर बहुत ज्यादा है, वो आपको दिखाते हैं और उसका असर क्या है वो बताते हैं। ये कौन से देश हैं? बहरीन है, साइप्रस, कुवैत, लेबनान, 25 देश हैं इसमें, ओमान, कतर, यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, मिस्र, लीबिया, यमन, बोत्सवाना, ईरान, जॉर्डन, सैन मरीनो, बेल्जियम, ग्रीस, ट्यूनीशिया, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, इराक, भारत और सीरिया। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है और इसमें यह बताया गया है कि कैसे किन से देशों में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। भारत अकेला नहीं है, लेकिन हालात बेहद खराब हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की एक चौथाई आबादी के लिए साफ पानी का बहुत बड़ा संकट है। ये जो देश हैं जिनके नाम इसमें आए हैं, वो साल में अपना 80% पानी हर साल खत्म कर देते हैं। 1960 में जो पानी की जरूरत थी वो अब दोगुनी हो गई है 2024 में। 2050 तक दुनिया में पानी की मांग जो है वो 20-25% और बढ़ेगी। सोचिए, अभी इतनी किल्लत है, फिर क्या होगा। 2050 तक दुनिया की 60% आबादी को एक महीने कम से कम पानी की बेहद ज्यादा कमी महसूस होगी। ये इस स्टडी के मुताबिक ये पता चला है। और पानी की कमी का असर क्या होगा? असर सिर्फ ये नहीं है कि हम आप परेशान होंगे, बल्कि ये भी है कि वैश्विक जीडीपी पर करीब उसमें $70 trillion का नुकसान होगा, असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरा जीडीपी किसके किन देशों की जीडीपी पर खतरा है? ये देश हैं भारत, मेक्सिको, मिस्र और तुर्की, जिनकी जीडीपी पर पानी की कमी के कारण जो खतरा है वो मंडरा रहा है, उसके ऊपर असर हो सकता है। पानी की कमी से खाद्य उत्पादन पर भी बहुत ज्यादा असर होगा। खाद्य उत्पादन पर जो असर होगा उससे कम से कम गन्ना, चावल, गेहूं, मेज, ये सब जो है उनके ऊपर असर पड़ेगा। और कम से कम 56% और फूड कैलोरीज 2010 से आगे जाकर और लोगों को देने के लिए चाहिए होंगे, लेकिन वो क्या हो पाएगा? साफ पानी की कमी से प्रदूषित पानी पिएंगे लोग, और सैनिटेशन पर भी असर होगा, साफ सफाई पर भी असर होगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इसमें लोगों को कई तरह की बीमारियां होंगी। और बीमारियां क्या हो सकती हैं? इसमें कॉलेरा जैसी बीमारी हो सकती है, और भी जैसे टाइफॉइड जैसी बीमारी है, ये इस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो ये बीमारियों का खतरा जो है वो बना रहेगा। पानी का जो बंटवारा करने वाले जो देश हैं, मतलब आपस में बांटते हैं वो पानी, उसमें तनाव हो सकता है, लड़ाई तक का खतरा हो सकता है। कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है, अभी ही उसका खतरा लगातार नजर आ रहा है। बिजनेस इंडस्ट्री सब पर असर होगा। इसका यह मतलब है कि बिजनेस जिसपे भी वाटर इंटेंसिव होगा, जहां पर पानी की ज्यादा जरूरत होगी, वहां पर मुश्किलें आएंगी इंडस्ट्री चलाने में। और इसका भी असर जो है वो बाकी जीडीपी पर, बाकी लोगों पर, हर प्रकार से लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा असर। तो इस तरह से जब पानी की कमी जो है उसको सिर्फ एक तरीके से कम किया जा सकता है, एक तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि वो अभी से पानी बचाना शुरू करे। एक एक बूंद पानी जो है वो बेहद अहम है, उसको बचाना चाहिए। और ये जो सारे देश हैं जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उनमें से कुछ ही ऐसा कर पा रहे हैं, बाकियों को ये सीखना होगा। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। नई लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। इस बार विपक्षी दलों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और वो नीट परीक्षा घोटाला, अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं।
नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण से शुरू होने वाले 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तैयारी लोकसभा सचिवालय ने पूरी कर ली है। 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा और उसके अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को 27 जून को संबोधित करेंगी। इस बार नई लोकसभा की रूपरेखा पिछली दो लोकसभाओं से काफी अलग है। बीजेपी अब बहुमत में नहीं है और घटक दलों के साथ एनडीए की सरकार चला रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी सांसदों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा के बेहद हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्षी दल नीट परीक्षा में अनियमितताएं, स्टॉक मार्केट क्रैश, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लोकसभा और राज्यसभा में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रहे हैं।
अगर आपको लगता है कुछ गलत नहीं हुआ तो जांच हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा, टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन में सब पता चल जाएगा। तो इससे बच क्यों रहे हैं शिक्षा मंत्री? एक तो आप 24 लाख बच्चों को का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, इतने सवाल उठ रहे हैं, 67 बच्चे 720 में से 720 लाते हैं, कुछ सेंटर्स में ऐसे बहुत उदाहरण है, तो उस सबकी जांच तो आवश्यक है, क्योंकि कई बच्चों का भविष्य तो है ही, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भी भविष्य अधर में है, उस पर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं।
दरअसल नीट परीक्षा में अनियमितता और अग्निवीर योजना के रोलबैक की मांग को लेकर अहम विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। घोसी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने एनडीटीवी से कहा, सरकार को संसद में जवाब देना होगा।
नौजवानों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे जैसे आज ताज़ा आप सुन रहे हैं नीट के पेपर भी लीक हो गया और हमारे यहाँ तो रिकॉर्ड ही बन गया उत्तर प्रदेश में, जो भी एग्जाम तो पेपर लीक हो जा रहा है, तो जो देश के भविष्य नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुझे लगता है कि हमारे जैसे सांसदों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और सरकार को जवाब देनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप लगातार पेपर लीक और फर्जी जांच एजेंसी और SIT बैठा कर लिपापोती नहीं कर सकते, और इस ये जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक वाले माफिया, इनके तार किस से जुड़े हुए हैं, ये तो सच देश को सामने आना चाहिए ना।
अग्निवीर योजना पर क्या मांग करेंगे?
अग्निवीर को रोल बैक किया जाए, अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए, ये देश के लिए खतरनाक है, नौजवानों के लिए खतरनाक है, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है।
उधर NDA सरकार ने भी 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तैयारी शुरू कर दी है। संसदीय कार्य मंत्री ने शुक्रवार को विपक्षी दलों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, सत्ताधारी दल और विपक्ष को टीम इंडिया की तरह देश के लिए काम करना होगा,
क्योंकि ये पहला सत्र है और मैं नए नए संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। मैं चाहता हूं कि हम मिल करके संसद को बहुत अच्छी तरह से चलाएं, और जैसे भी मैंने पहले कहा है कि भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है, और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। हमारे पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में NDA को बहुमत दे करके फिर से देश का संचालन करने का मौका दिया है, और हमारे बाकी विपक्ष के पार्टियों को विपक्ष में बैठ करके एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए देश का निर्देश है। तो सबका बराबर योगदान होता है, पार्लियामेंट अकेला कोई चला नहीं सकता है, सब मिलकर के चलाना होता है।
17वीं लोकसभा के दौरान 5 साल तक अलग अलग मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव दिखा था। अब इस बार 18वीं लोकसभा में विपक्षी सांसदों की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में सत्ताधारी NDA गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती गठजोड़ को एकजुट रखने के साथ साथ विपक्ष के तीखे सवालों से निपटने की होगी। संसद भवन से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।